हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उन सभी को ऐसे साथ में डांस करते देख स्टेज से नीचे साइड में खड़े अनय, मनस्वी ने एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखा, लेकिन उन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई अपने पार्टनर को साथ में डांस के लिए पूछने की। इसलिए वो लोग बस वहाँ पर खड़े होकर सामने डांस कर रहे कपल्स के लिए ताली बजा रहे थे और स्माइल कर रहे थे। और तभी स्टेज पर वो डांस खत्म हुआ और एकदम ही तालियों की तेज़ कड़कड़ाहट वहाँ पर गूंजी। आदित्य को इतने सारे लोगों के सामने डांस करने में बहुत ज़्यादा कम्फर्ट नहीं फील हो रहा था, इसलिए उसने धीरे से सुनैना के कान में ये बात बोली और वो दोनों पहला गाना खत्म होते ही तुरंत ही स्टेज से उतरकर नीचे आ गए और वो दोनों वहाँ पर पार्टी हॉल में कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट से बात करने लगे। कुछ देर बाद गेट से अंदर आते हुए आदित्य को रवि नज़र आया और उसके साथ वो लड़की भी थी। उस लड़की ने इंडियन लहंगा जैसी ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी और साथ में दुपट्टा भी लिया हुआ था और अपने दुपट्टे से वो अपना चेहरा ढकने की कोशिश भी कर रही थी। उसने लगभग अपना आधा चेहरा छुपा रखा है जिससे कि साफ समझ में आ रहा है वो किसी से तो बचकर छिपने की कोशिश कर रही है। रवि जानबूझकर उसके पीछे चल रहा है जिससे कि वो उस लड़की पर नज़र रख पाए और वो लड़की भी थोड़ी सी घबराकर इधर उधर पार्टी में सबको देख रही है और उसकी शक्ल से ही साफ नज़र आ रहा है कि इतने सारे लोगों के बीच वो वहाँ पर बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं है और काफ़ी डर भी रही है, लेकिन किससे ये उसे खुद भी नहीं पता है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई उसे वहाँ पर नज़र नहीं आया है। पिछले एक हफ्ते से वो लड़की रवि के साथ उसके घर पर थी और इसी बीच आदित्य ने वहाँ पर डॉक्टर को भेजकर उसकी प्रेगनेंसी जांच भी करवा ली थी, जिससे कि कन्फर्म हो गया था वो लड़की झूठ नहीं बोल रही और वो 2 महीने प्रेग्नेंट थी। आदित्य की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, उसने वो सब कुछ नोटिस किया तो वो वहाँ से उसी तरफ ही जाने लगा, लेकिन तभी सुनैना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो आदि? आदित्य ने पीछे मुड़कर सुनैना की तरफ देखा और अपने मन में सोचा कि वो उसे क्या बताए, क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं था उसे उस लड़की के बारे में बताने का, क्योंकि उस लड़की को लेकर आदित्य ने काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ है और अभी सुनैना को वो सारा प्लान बताने और समझने का टाइम नहीं था। मैं बस अभी आया, वो रवि से थोड़ा काम है, वो इतने टाइम बाद आज वापस आया है ना, तो बस, आदित्य ने सुनैना की तरफ देखकर कहा। तो सुनैना ने भी धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ दिया और फिर आदित्य वहाँ से आगे चला गया और सुनैना नैना से बात करने में बिजी हो गई। आदित्य सीधे ही रवि से मिलने के लिए नहीं गया, उसने रवि को कॉल करके एक सीक्रेट रूम में बुलाया जो कि उस घर में पहले से ही बना हुआ है और वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, और आदित्य ने उस लड़की को भी वहाँ पर ही लेकर आने के लिए कहा, लेकिन उसे सीक्रेट रूम में लेकर आने के लिए मना कर दिया क्योंकि उन दोनों को अभी उस लड़की पर पूरा भरोसा नहीं है। इसलिए रवि ने उस लड़की को कमरे के बाहर ही रोक दिया और फिर रवि अकेले ही आदित्य से मिलने के लिए सीक्रेट रूम में गया। अंदर जाने से पहले रवि ने उस लड़की को सब कुछ समझा दिया और वहीं पर रखकर उसके वापस आने का इंतज़ार करने के लिए बोला। उस लड़की ने रवि की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और इसके जाने के बाद से वो वहाँ दरवाजे के बाहर ही खड़ी है और इधर उधर देख रही है। अचानक ही वहाँ साइड में खड़े हुए दक्ष की नज़र भी उस तरफ पड़ी और उसने उस कमरे के दरवाजे के बाहर ऐसे एक लड़की को अकेले खड़ा देखा और वो लड़की बहुत ही अजीब तरह से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते हुए इधर उधर देख रही थी। दक्ष का पहले ही मूड खराब था क्योंकि यहाँ पार्टी में वो आदित्य की इंसल्ट करने का सोचकर आया था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और चीज़ें उसके हिसाब से नहीं हुई तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए ही इधर साइड में स्मोकिंग करने के लिए आ गया था। उसने तुरंत ही सिगरेट वहाँ पर साइड में फेंक दिया और उस लड़की की तरफ आगे आने लगा। वो लड़की दक्ष से ही बच रही थी क्योंकि उसने पार्टी में अंदर आते हुए एक नज़र उसे देख लिया था और तब से वो उसे ही छिपाने की कोशिश कर रही है, और अभी जैसे उसने खुद ही दक्ष को अपनी तरफ आते देखा वो एकदम ही घबरा गई और अपनी जगह से उल्टा चलते हुए पीछे की तरफ हटने लगी। हे तुम लड़की, रुको रुको, कौन हो तुम? इतना चिल्लाते हुए दक्ष उसके पीछे आया और वो मुड़कर एकदम ही दौड़ती हुई वहां से दूर कॉरिडोर में एक तरफ भागी, लेकिन आखिर में दीवार आ जाने की वजह से वो आगे नहीं भाग पाई और वहां पर रुक गई। दक्ष भी उसके पीछे दौड़कर आता हुआ वहां तक आ गया। लड़की के पीछे अब और कहीं भागने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचा था क्योंकि उसके पीठ के एकदम पीछे दीवार थी, और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो दक्ष भी वहां पर जाकर उसके सामने उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया जिससे कि वो लड़की कहीं भी भाग ना पाए। उस लड़की का दुपट्टा चेहरे से हट गया और दक्ष ने एकदम साफ ही उस लड़की का चेहरा देखा और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए बोला, रश्मि, तुम यहाँ? रश्मि ने दोनों हाथ उसके सामने जोड़कर बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहा, दक्ष प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे मत मारना, और मेरे बच्चे को भी, हमारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी, तुम कैसे ही अपने हाथ से ही अपने बच्चों की जान ले सकते हो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सारी बातें बोलते हुए रश्मि के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही है, और डर की वजह से उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैर एकदम ही कमजोर पड़ गए हैं और वो खड़ी भी नहीं रह पा रही, इसलिए वो हाथ जोड़ते हुए वहीं जमीन पर घुटने के बल बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, जिसकी वजह से सामने खड़ा दक्ष भी अब उसे धुंधला सा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दक्ष रश्मि को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान है, वहीं उसकी ऐसी बातें उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही हैं, इसलिए वो अपनी जगह से आगे बढ़ा और बोला, रश्मि तुम ये सब क्या क्या बोल रही हो, और मैं क्यों मारूंगा तुम्हें, मैं तो तुमसे प्यार। इतना बोलते हुए दक्ष आगे बढ़कर रश्मि का हाथ पकड़ते ही वाला था, और रश्मि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली डर की वजह से। तभी पीछे से किसी ने दक्ष का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और पीछे अपनी तरफ ही खींच लिया। तुम डरो मत रश्मि, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे होते हुए, पीछे से आदित्य की आवाज आई, तो रश्मि ने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसे अपने सामने दक्ष लगभग हवा में टंगा हुआ सा नजर आया, क्योंकि उसे दो लंबे चौड़े बाउंसर जैसे दिखने वाले बॉडीगार्ड ने उसके दोनों हाथों से पकड़ रखा था। आदित्य के साथ ही वहां उसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अरविंद भी खड़ा हुआ था, और रवि भी वहां पर उसके सामने ही था। उन सबको दक्ष के पीछे खड़ा हुआ देखकर रश्मि को थोड़ी सी राहत महसूस हुई, और दक्ष के दोनों हाथ गार्डों ने पीछे करके पड़े हुए हैं, जिससे वो अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं पा रहा है। आदित्य देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, और तुम रश्मि को कैसे जानते हो, तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे पर्सनल मैटर के बीच बोलने का, दक्ष पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पीछे मुड़कर आदित्य की तरफ देखने नहीं दिया और उसके सिर को कसकर पकड़ रखा है।
रश्मि ने दक्ष की बातें सुनी, लेकिन वो उसे जवाब देते हुए कुछ भी बोल नहीं पाई, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है। लेकिन आदित्य उसकी बात का जवाब देता हुआ बोला, कौन सा पर्सनल मैटर, जब तुम उसका जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने जा रहे थे जिससे कि तुम्हारे कांड के बारे में किसी को पता न चल पाए, और तुमने उसे भी मरवाने की कोशिश की। आदित्य की बात सुनकर दक्ष गुस्से में बोला, मैंने कब रश्मि को मरवाने की कोशिश की, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग सच में ही खराब है, और रश्मि तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, और मैं तो कितना खुश था ना जब तुमने मुझे ये बात बताई कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन फिर उसके बाद से तुम कहाँ गायब हो गई, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। उसने रश्मि की तरफ देखते हुए ये सब कहा, तो रश्मि ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही है। वो एकदम धीरे कदमों से चलकर दक्ष की तरफ आई और बोली, कौन सा प्यार, वो सब प्यार नहीं बस झूठा नाटक था जो तुमने मुझे अपने बिस्तर तक लाने के लिए किया था, और मैं बेवकूफ़ तुम्हारी बातों में आ गई, और मेरे पेट में जो है उसे हमारे प्यार की निशानी समझती रही, लेकिन तुम इसे और मुझे हम दोनों को ख़त्म कर देना चाहते हो, है ना, इसीलिए आज भी तुम यहाँ पर आए हो मेरे पीछे। रश्मि ने बहुत ही नफ़रत से उसकी तरफ देखते हुए ये सब बोला, तो दक्ष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, और उसने तुरंत ही अपनी सफाई में कहा, नहीं नहीं तुम ये सब क्या बोल रही हो, मैंने कब तुम्हें मारने की कोशिश की, रश्मि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कोई भी नाटक नहीं किया, इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो तुम दोनों मुझ पर, और आदित्य बहुत हो गया, अपने गार्ड से कहो छोड़ दे मुझे। दक्ष की ऐसी बातों पर आदित्य, रवि और रश्मि किसी को भी भरोसा नहीं है, लेकिन आदित्य को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पूरा झूठ भी नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया दक्ष का हाथ छोड़ने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही दक्ष का हाथ छोड़ा, दक्ष अपने हाथ पर उनकी पकड़ के जो निशान बने हुए थे उनको ही अपने हाथों से छूते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आदित्य तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है, तुम क्यों हमारे बीच में आ रहे हो, और रश्मि तुम यहाँ इसकी पार्टी में कैसे आई। इतना बोलते हुए वो आगे रश्मि की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार रश्मि अपनी जगह से घबराकर पीछे नहीं हटी, क्योंकि आदित्य उसके सामने ही खड़ा था और रवि भी वहां पर था, तो उसे लगा कि वो दोनों उसे कुछ नहीं होने देंगे, और दक्ष उन सबके सामने तो रश्मि को कुछ नहीं कर पाएगा। तभी आदित्य ने रश्मि से कहा, बताओ अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्योंकि ये तो शायद खुद ही भूल गया है, याददाश्त कमजोर लगती है बेचारे की, और दूसरों को पागल मेंटल बोलता है। इतना बोलते हुए आदित्य दक्ष की तरफ देखकर हंसा, और उसके इस तरह से हंसने पर दक्ष को गुस्सा आई, और गुस्से में उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी कसकर बांध ली, लेकिन फिलहाल वो आदित्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड की पूरी टीम वहां पर खड़ी हुई है। इसलिए उसने जवाब के इंतजार में रश्मि की तरफ देखा तो रश्मि ने आगे जाकर उसे अस्पताल वाली पूरी बात बताई और उससे पहले भी दो बार जब उस पर अटैक हुआ था और उन लोगों ने मिस्टर चौहान नाम ही लिया था। इसके बाद रश्मि भागते हुए अस्पताल में किस तरह आदित्य से टकराई और उसने रो रोकर आदित्य से हेल्प मांगी और तब से लेकर अब तक आदित्य ने ही उसे उन सब से छुपा कर रखा हुआ था। और ये सारी बातें सुनकर दक्ष की आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गईं। क्रमशः